Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atma Shakshatkar Kathopanishad ki pratham adhyay to humne gaye saal Maharaj ji se shravan kiya. द्वितीय अध्याय में आत्म साक्षात्कार की सुंदर बातें महाराज जी द्वारा बताएंगी। जब भी महाराज जी पधारते हैं हमें अखंडानंद साक्षात्कार तो होता ही है, और उसी के साथ ये आत्म साक्षात्कार का भी हमें ज्ञान मिलेगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सब की तरफ से वंदन करता हूँ। जो संत और भी बैठे हैं उनको भी आपके सब की तरफ से चरणों में वंदन करता हूँ। आप सब की तरफ से पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करेंगे।
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जनानाम यद्गानम भ्रमति मिरहानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीं। स्मरामि प्रातस्तं प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। उपस्थित बंधुओं एवं माताओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष फिर आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यों तो कठोपनिषद का प्रथम भाग पिछले वर्ष हुआ था, तो नाम तो कठोपनिषद ही है, लेकिन असल में जो इसका दूसरा भाग है वही इसका सार सर्वस्व है। पहले भाग में कथा ज्यादा है और उपदेश कम है, और दूसरे भाग में जो नचिकेता का तीसरा प्रश्न था कि ये जीवात्मा मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, प्रमाण कोई मिलता नहीं है, तो इसमें नचिकेता का प्रश्न है कि रहता है कि नहीं रहता है, ये यमराज जी से ही पूछ रहे हैं। और फिर उनको बांध भी दिया कि हमको वो उस आत्मा का स्वरूप बताओ जो धर्म से भी परे है और अधर्म से भी परे है। माने धर्माधर्म जो मोक्ष, जो धर्म पुरुषार्थ है उससे जो परे है उस आत्मा का साक्षात्कार कराइए। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रात् कृतात् कृतात् कार्य से भी परे है, माने इस प्रपंच से भी परे है, और जो इसका कारण कोई प्रकृति बताता है, कोई ईश्वर बताता है, कोई तटस्थ ईश्वर बताता है, कोई मायोपादिक बताता है, कोई माया विशिष्ट बताता है, कोई सीधा ब्रह्म कोई बताता है, तो ये सब विकल्प जो हैं, तो बोले उस ब्रह्म के बारे में बताइए जो कार्य और कारण दोनों भावों से परे है और वर्तमान से भी परे है, भूतच्च भव्याच्च भूताच्च भव्याच्च, भूतकाल से भी परे है और भविष्यत काल से भी परे है। इसका अर्थ है कि वर्तमान से भी परे है, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों से जो परे है और कार्य और कारण इन दोनों से जो परे है और धर्म और अधर्म जो इन दोनों से परे है, उस ब्रह्म को आप साक्षात देखते हो, वही आप हमको दिखलाओ। ये यमराज के प्रति नचिकेता का प्रश्न है। तो इसमें दो प्रश्न है, एक तो मरने के बाद जीवात्मा रहता है या नहीं रहता है, और दूसरा यह है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये जो दूसरा अध्याय है कठोपनिषद का, ये असल में इसी प्रश्न के उत्तर के फलस्वरूप है। पहले जो दो प्रश्न थे कि मेरे पिताजी को मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, और दूसरा प्रश्न था कि स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ये हमको बताइए, तो ये दो प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। तीसरे प्रश्न का भी संक्षेप से तो उत्तर दे दिया था, लेकिन विस्तार से ये दूसरे अध्याय में दिया जाएगा। अब इसमें प्रश्न ये है कि एक चीज है आत्मा और एक है ब्रह्म, एक है ईश्वर। अब मैंने आपके सामने आत्मा शब्द बोला, तो ये शब्द की प्रकृति होती है कि जो आत्मा शब्द सुनते ही आपका ध्यान अपने भीतर जाएगा, और ब्रह्म शब्द सुनते ही या ईश्वर शब्द सुनते ही आपका ध्यान जो है शरीर से बाहर सारे प्रपंच में जाता है। ये शब्द की शक्ति है। तो ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? जो धर्म से भी परे है अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है कारण से भी परे है नारायण, तो ऐसा ब्रह्म और ऐसा आत्मा इनका परस्पर क्या संबंध है, ये भी एक प्रश्न है। और अगर वो आत्मा ही है तो हमको अनुभव में क्यों नहीं आता? देखो जो मूल प्रश्न है आज के योग का, तो ये खास प्रश्न है। वैसे इसको असत्वापादक आवरण बोलते हैं और अभानापादक आवरण बोलते हैं, ये शास्त्र की पारिभाषिक शब्द हैं। बोले ईश्वर है नहीं, परमात्मा है नहीं, ब्रह्म है नहीं, आत्मा है नहीं। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है। अगर होता तो दिखता, तो दिखता माने हमारी इंद्रियों का विषय होता, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता। ये जो इंद्रियां हैं इनको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। मन और बुद्धि से भी जो जाना जाता है वो वही जाना जाता है जो मन जो इंद्रियों से जाना जाता है, क्योंकि मन और इंद्रियों में सारी सूचना तो ये इंद्रियां ही भरती हैं बाहर से। मन और बुद्धि उन्हीं के अनुसार चिंतन करती हैं। तो मूल प्रश्न यही है कि क्या आत्मा परमात्मा प्रत्यक्ष का विषय है, प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है? चूंकि नहीं जाना जा सकता, होता तो दिखलाई पड़ता, अनुभव में आता। चूंकि नहीं दिखलाई पड़ता, अनुभव में नहीं आता, इसलिए नहीं है। तो असत्वापादक माने है नहीं, और अभानापादक माने होता तो अनुभव में आता ना रहा, तो उसका भान नहीं हो रहा है इसलिए नहीं है, और है ही नहीं। तो ये दो आवरण बुद्धि पर चढ़े हुए हैं, तो तो मूल प्रश्न यही है कि चलो भगवान को ढूंढें, कहां ढूंढें भाई, कि बाहर ढूंढें। तो ये सबसे पहला मंत्र है इसका, परांचिखानी व्यत्रनत स्वयंभूर तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। बोले ये इंद्रियों से तो कभी देखा ही नहीं जा सकता। अब आप समझ लो, अगर किसी से कह दो कि इंद्रियों से ये देखा नहीं जा सकता तो जितने भक्त हैं वो भी उड़नछू हो जाएंगे। अरे जिसका इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, तुलसीदास जी तो कह गए नैन विषय मोह कर भयो सो समस्त सुख मूल। आंखों से तो देखा जाता है, नैनों का विषय होता है, ये कैसे कहते हो? तो नैनों का विषय तो रूप होता है नारायण। मैं आपको देख रहा हूं तो आपका रूप देख रहा हूं, आपको थोड़े देख रहा हूं, माने आप जो हैं वो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, आपका रूप दिखलाई पड़ रहा है, आपका गुण दिखलाई पड़ रहा है, आपका नाम दिखलाई पड़ रहा है, ये तो सब दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन इन क्या इतने फुट लंबाई का, इतने गोरे रंग का, या ऐसा या वैसा इस शरीर की बनावट वाला, क्या ये हैं आप? तो ये तो कोई भी नहीं मानता है, वेदांत की बात नहीं है। जो भी शरीर से भिन्न जीव को मानता है वो कोई भी नहीं मानता है कि उसका नाम और रूप होता है। जिस शरीर में जीव जाता है उसी शरीर का नाम और रूप धारण कर लेता है। तो दिखता तो है नाम और रूप, और जो नहीं दिखता है उसको हम देखना चाहते हैं तो आंख से तो नहीं देख सकते। अब यहीं पर शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है। जो चीज आंख से नहीं देखी जा सकती, आंख से माने पांचों ज्ञानेन्द्रियों से, उसका मन बुद्धि से भी चिंतन नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है। अनुमान तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही करोगे, और फिर प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए तब अनुमान प्रमाण होता है। आपने कहीं धुआं देखा, बोले आग है यहां, तो ये अनुमान ही तो है। जब हम वहां पास पहुंचे तो मालूम पड़ा यहां तो बर्फ की सिल्ली रखी है, तो बर्फ की सिल्ली में से भी धुआं उठता दिखलाई पड़ता है। तो धुआं का लिंग तो आपने देख लिया, लेकिन वो अनुमान जो किया था कि यहां अग्नि है वो तो गलत हो गए। तो जब तक अनुमान प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तब तक वो प्रमाण नहीं होता है। तो जो प्रत्यक्ष नहीं है वो अनुमान का भी विषय कैसे होगा? और अनुमान का विषय नहीं होगा तो मन बुद्धि का भी विषय नहीं होगा। तो अर्थापत्ति और उपमान, अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ये जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हो, स्वाध्याय में सुनते ही होंगे, तो ये कोई भी प्रमाण जो है इस आत्मा परमात्मा के बारे में आपको नहीं दिखा सकता है। तो ये तो आपका व्यर्थ परिश्रम है। अगर आप चाहते हो कि इन आंखों से या इन इंद्रियों से हम परमात्मा का अनुभव कर लें, यद्यपि इंद्रियों से भी जो अनुभव होता है, जैसे आप आभूषण को देखते हो तो आभूषण को देखते हो कि सोने को देखते हो? तो दिखाई तो सोना ही पड़ता है ना, लेकिन उस सोने में वो नाम रूप का आग्रह ऐसा है, बोले भाई वो कुंडल बताना जरा इसको। अब वो कुंडल बताना कि सोना बताना? तो आप चाहते तो असल में सोना हो, उसी का मूल्य देते हो, लेकिन वो कुंडल का आकार ऐसा मन में घर कर गया है कि वो सोना पीछे रह जाता है कुंडल। तो ये जितना भी देख रहे हैं हम, ये नाम रूप जिसमें रचे हुए हैं, बचे हुए हैं नारायण, उस परमात्मा ब्रह्म को तो हम देख नहीं पाते हैं, उसी को अस्थि भाति प्रिय बोलते हैं, परंतु वो सेकेंडरी ज्ञान है, वो प्राइमरी ज्ञान नहीं है। प्राइमरी ज्ञान है यहां, यहां आप आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे तो सब जगह आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा, और यहां नहीं हुआ तो बाहर तो केवल अनुमान प्रमाण से होगा। बोले दिख रहा है इसलिए परमात्मा होना चाहिए, ये अनुमान प्रमाण है। लेकिन परमात्मा चाहिए है कि नहीं है ये प्रश्न है। क्या आप दुनिया को देख के आपको ऐसा लगता है कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए? यद्यपि आप देख रहे हो भगवान को ही, और चाहे जितना अस्थि भांति प्रिय आप समझ लो कि इसमें अस्थि परमात्मा है, भांति परमात्मा है, प्रियता परमात्मा है, ये सब मन को आप समझा लोगे, लेकिन भीतर से ये स्वीकृति नहीं होगी कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। और अगर यहां अपने स्व में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर सर्वत्र कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उगरे नैनन साहिब देखो, अद्भुत रूप निहारो, साधु सहज समाधि भले। तो कबीर दास जी की तरह से आप भी कहोगे कि आंख तो हमारी खुली हुई है लेकिन देख रहे हैं हम साहब को ही, परमात्मा को ही। तो ये प्रथम मंत्र कहता है कि परांच खानी, खानी माने इंद्रियां, ये परांच माने बाहर की ओर देखने वाली हैं, और व्यत्रणत स्वयं व्यत्रणत, परमात्मा ने इनकी हिंसा कर रखी है, ये बाहर ही देख सकती है भीतर देख ही नहीं सकती है। इसलिए इंद्रियों से आप आत्मा नहीं देख सकते हो। आत्मा तो वो है जिसके प्रकाश में, जिसकी शक्ति से ये इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन इंद्रियां जो हैं वो उलट करके परमात्मा को नहीं देख सकती हैं। परांच खानी वितरणत माने उनकी हिंसा कर दी गई है, वो पीछे नहीं फिर कर देख सकती। किसने हिंसा कर दी भाई? बोले स्वयंभू, स्वयंभू परमात्मा ने हिंसा कर दी। हिंसा कर दी का मतलब इनकी रचना ही इस प्रकार की है कि ये अपने उल्टी दिशा में नहीं देख सकते। तस्मात इसलिए परांग पश्यति, इसलिए ये बाहर की तरफ ही देखती हैं, न अंतरात्मन, अंतरात्मा को ये नहीं देख सकते। तो ये तो आशा छोड़ दो आप कि हम बाहर देख लेंगे। अब बोले भीतर ही देखें चलो। बोले भीतर तो देखोगे लेकिन सब भीतर भी नहीं देख सकते। कश्चित धीरा, कोई कोई धीर पुरुष ऐसा होता है। तो भाष्यकार लिखते हैं कि धीर का अर्थ है कि जो गंगा जी के जल के साथ तैरना तो आसान है, जिस दिशा में पानी जा रहा है उस दिशा में आप तैरना शुरू करो तो आसान है, लेकिन विपरीत दिशा में तैरना जो है ये तो अच्छा कोई तैराक होगा उसी वो ही तैर सकता है। तो इंद्रियों की दिशा में, विषयों की दिशा में बाहर न जा करके इनसे उल्टी दिशा में विचार करना, ये किसी धीर पुरुष का ही काम है, बुद्धिमान पुरुष का ही काम है। यहां बुद्धिमान का मतलब है जो शब्द को प्रमाण मानता, माने शास्त्र को ही प्रमाण मानता है वही, और जो अपने प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है वो परमात्मा को नहीं देख सकता। तो कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत, प्रत्यगात्मा माने ये जो भीतर, प्रत्यक माने भीतर और आत्मा माने तो मैं है, ये भीतर वाला जो मैं है कहां है? ये भीतर वाला मैं आंख के भीतर, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर, ये तो सब कारण है ना, इंद्रियां ही हैं। आंख के भीतर, मन के भीतर, बुद्धि के भीतर, देवताओं के भीतर और अविद्या के भीतर और भीतर के भीतर, माने जो अंतरतम प्रदेश में जो बैठा हुआ है, इसीलिए उसको अंतर्यामी बोलते हैं, माने उससे भीतर और कुछ नहीं है, सबसे भीतर आत्मा ही है, उसी को प्रत्येक आत्मा बोलते हैं। तो कोई कोई धीर पुरुष ऐसा होता है जो इस प्रत्येक आत्मा को भीतर देखता है, आवृत्त चक्षु, अपनी इंद्रियों को लौटा करके, मन विषयों में इंद्रियां नहीं जाती, रुचि नहीं है। अच्छा, जिन चीजों में आप बचपन में खेलते थे जिन खिलौनों से, अब खेल सकते हो क्या? अपने पोतों के साथ भले ही खेल लो तो वो भी नाटक करोगे, आपको कोई मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप उस उम्र को पार कर गए। तो ये बुद्धि की उम्र जो है, ये जिसकी बढ़ती चली जाती है, उसकी इंद्रियों की उम्र छोटी होती चली जाती है। ये सहज नियम है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में शक्ति खत्म हो गई है इसलिए अब हमको उसमें कोई मजा नहीं आता है, नहीं, वो आउटग्रो कर दिया हमने, बुद्धि का स्तर से ऊंचे चले गए, ये प्रकृति की तरफ से हो गया। और कोई जानबूझ करके करे तो नारायण ब्रह्मचर्य अवस्था में भी कर सकता है। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु, माने चक्षु अर्थात इंद्रियों की उल्टी दिशा में। मगर करेगा कौन? बोले अमृतत्वम इच्छन, जो अमृतत्व का इच्छुक है वो ही कर सकता है। अमृत माने न मरना, ये दो ही समस्याएं हैं जीव की, एक सुख और एक भय। सुख हमको प्राप्त हो और दुख का भय लगा रहता है, और ये दुख का भय का जो मूल कारण है वो है इस शरीर में अभिनिवेश। ये एक दिन मर जाएगा, सब दुखों का सब भयों का कारण यही है कि ये एक दिन मर जाएगा। तो मरेगा तो सही भाई, जब पैदा हुआ है तो इतना जानते हुए भी भय समाप्त नहीं होता है। तो ये भय समाप्त कब होगा? जब आप उस आत्म तत्व की इच्छा करेंगे। एक चीज ऐसी है कि ये शरीर रहते हुए भी इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अच्छा देखो, इसमें परमात्मा रहता है शरीर में कि नहीं रहता है? तो परमात्मा को क्यों डर नहीं लगता है कि शरीर मर जाएगा? क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर में भी हूं और शरीर के बाहर भी हूं। तो शरीर मर जाएगा तो क्या है, बाहर वाला तो है ही है। एक घड़ा फूट जाएगा तो घटाकाश फूटेगा, महाकाश थोड़ी फूट जाएगा। ऐसे ही जब ये जान लेते हैं कि ये आत्मा एक शरीर वाला नहीं है, सब शरीरों में एक ही आत्मा है, तो फिर ये शरीर का भय जो है निवृत्त हो जाता है। यही अमृतत्व की इच्छा है। महाराष्ट्री सुनाते थे कि यहां बॉम्बे में किसी का फोन गलत मिल जाते हैं कभी कभी, तो आजकल मोबाइल के भी मिल जाते हैं रॉन्ग नंबर, लैंडलाइन के तो प्रायः मिल ही जाते थे पहले, तो कोई मिला तो रहे थे बच्चू भाई को और मिल गया महाराज जी से तो उसने कहा, हेलो हरी भाई, मैं लाकड़वाला बोल रहा हूं। अब कौन लाकड़वाला थे पता नहीं, महाराष्ट्र ने जो बोला है वो मैं आपको सुना रहा हूं। हेलो हरी भाई, मैं लाकड़वाला बोल रहा हूं। तो महाराज जी ने कहा, भाई यहां तो सत्संग वाला है ड्रेस वाला नहीं है। अब ये वाला वाला जो है, यही इसी को परिच्छिन्नता बोलते हैं, इसी को मृत्यु भय बोलते हैं, इसी को जो है अभिनिवेश बोलते हैं। ये जब तक समाप्त नहीं होता है तब तक मृत्यु का भय और छोड़ सारे कोई दुख नहीं टूट सकता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण। अब इतनी चीजें तो भरत जी को नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न निर्वाण चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो जन्म जन्म रति राम पद माने शरीर तो मिले लेकिन इसमें हमें आपका स्मरण बना रहे, ये चाहिए। तो जन्म से परहेज नहीं है इसमें, निर्वाण काय का होगा नारायण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। तो ये मूल जब तक मुमुक्षता नहीं होती है, हमारे शंकराचार्य जी जो पुरी वाले हैं स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, अब वो हमारे शब्द इसलिए निकल जाता है कि वो आश्रम में रहे हैं बहुत दिन तक और अब भी आश्रम पर कृपा करते ही रहते हैं, तो वो हमारे शब्द निकल जाता है। तो हमारे शंकराचार्य जी महाराज वो कहते हैं कि मुमुक्षुता रहित वेदांत जो है वो कभी फलित नहीं होता है। आप चाहे जितना वेदांत सुनो, चाहे जितना पढ़ो, स्वाध्याय करो, लेकिन अगर आपको मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है, तो वो उसका कोई फल नहीं होगा। क्योंकि वेदांत का फल तो है मुमुक्षुता की पूर्ति, मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति। और मोक्ष ही नहीं चाहिए हमें तो वेदांत सुनना सुनाने का कोई अर्थ भी नहीं होता। तो अमृतत्व इच्छन का अर्थ है कि अगर हमें अमृतत्व की इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा नहीं है, तो फिर हम काहे लिए वेदांत में माथा पच्ची करेंगे, क्यों इंद्रियों को विषयों से रोकेंगे, क्यों विचार करेंगे, क्यों ये वैराग्य इत्यादि की परवाह करेंगे। नारायण, ये तो सब मुमुक्षुता से संबंधित है। तो पहला मंत्र में यही बात इन्होंने कही, दूसरे मंत्र में भी ऐसी बात है, अब तीसरा मंत्र ले रहा हूं मैं। बोले अच्छा चलो, इस आत्मा को हम जानना चाहते हैं तो आत्मा को जाना है। अभी मैंने कहा ना कि आत्मा शब्द कहते ही आप शरीर के भीतर आ जाते हो। तो ये देखो कि इस शरीर के भीतर जो है कोई शक्ति है कि कोई ज्ञान है, क्या चीज है जिसको आत्मा 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 सब शास्त्र बोलते हैं, सब महात्मा बोलते हैं, और जो आत्मा सोई परमात्मा, ये बच्चा बच्चा गांव में नारायण संस्कारों से बोलता है, अजी जो आत्मा है सोई परमात्मा है, ऐसा अपनी तरफ तो ऐसा बोलते हैं, तुमा नहीं बोलते हैं, तमा बोलते हैं, जो आत्मा है सोई परमात्मा है नारायण। तो ये आत्मा परमात्मा आखिर इस शरीर में क्या कर रहा है, कैसे इसका पता लगा, तो यही तीसरे मंत्र में बता रहे हैं, आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं ना। ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अब ये एतद् वै तत् की झड़ी लगाएंगे यमराज महाराज, यही है परमात्मा। होशियार खबरदार, जो मैं बता रहा हूं समझ में आ जाए तो अभी कल्याण हो जाएगा, और नहीं तो पढ़ते रहो सुनते रहो। एतद् वै तत्, यही है वो आत्मा जिसके बारे में तू पूछ रहा है। क्या है प्रभु? बोले येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव विजानाति। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनका ज्ञान कौन कर रहा है? बोले रूप तो आंख के द्वारा जाना जाता है, शब्द जो है वो कान के द्वारा जाना जाता है, माने इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही हैं। तो बोले इंद्रियां ही ग्रहण कर रही हैं या आप ग्रहण कर रहे हो?